नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा, वेब्स ओटीटी को भविष्य में देश के एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, रोहतास, किशनगंज और सीतामढ़ी सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। और एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में अब से थोड़ी देर बाद भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से मैच का सजीव प्रसारण किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी इस दौरान विमान, रेलवे, कृषि और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया आगमन से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्म हट चरम पर पहुंच गई है। हालांकि पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम बिहार में विकास के बढ़ते कदम को बढ़ावा देने वाला है। सीमांचल के पिछड़े क्षेत्र को गति देने के लिए पूर्णिया से एयरपोर्ट सेवा शुरू करने और वंदे भारत जैसे महत्वपूर्ण ट्रेन की सौगात आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री यहां मुख्य आयोजन स्थल सीसाबाड़े स्थित SSB कैंप में विशाल जनसभा को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जो करीब 45,000 करोड़ रुपए की योजना होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन।
प्रधानमंत्री श्री मोदी कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजना के पहले चरण का भी शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 2,680 करोड़ रुपए से अधिक है। इस परियोजना के तहत नहर उन्नयन, गाद की सफाई, क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण और डिस्चार्ज क्षमता को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 क्यूसिक तक करने की योजना है। इससे उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण और कृषि क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। श्री मोदी बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा। उल्लेखनीय है कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार लगभग 90% का योगदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री भागलपुर के पीरपैती में 2,400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो इमिशन तकनीक पर आधारित ये पावर प्लांट बिहार का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का निवेश होगा, जिसकी लागत 25,000 करोड़ रुपए है। ये परियोजना राज्य को समर्पित बिजली उपलब्ध कराएगी और बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगी। रेलवे क्षेत्र में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जिलों को सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री दो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के परिचालन की भी शुरुआत करेंगे। ये रेलगाड़ियां सहरसा से अमृतसर और जोगबनी से तमिलनाडु के ईरोड के बीच चलाई जाएंगी। श्री मोदी विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 2,170 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत 4,410 करोड़ रुपए है। ये अररिया और किशनगंज जिलों को जोड़कर सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमीन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अपने दौरे के क्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 35,000 लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से घर की चाबी भी सौंपेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार के लिए बड़ा सौगात लेकर आते हैं, और कल भी 45-46 हजार करोड़ का सौगात, चाहे वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हो, कोसी मेची लिंक का हो मामला, रेल का हो, वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, एसटीपी और नाली का जो ये पानी निकासी का मामला हो, तो प्रधानमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दो डबल इंजन की सरकार बिहार को, विकसित बिहार के सपना को पूरा कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा है कि वेब्स ओटीटी एक अनूठा मंच है जिसे आने वाले समय में देश के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री जाजू ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर दूरदर्शन, आकाशवाणी के लाइव चैनल के साथ ही प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं।
एक अपने आप में बहुत ही अनूठा प्रयोग है, क्योंकि न केवल एक ओटीटी है बट आने वाले समय में इसको हम एक देश का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे भी विकसित कर रहे हैं, और इसमें न केवल लाइव चैनल्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ बहुत अच्छा ट्रेंड पोल कंटेंट भी है, बहुत अच्छा आर्काइवल कंटेंट भी इसके ऊपर अवेलेबल कर रहे हैं, साथ ही साथ पब्लिकेशंस डिवीजन का भी जो हमारी किताबें हैं, जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, उसको भी इसमें एक्सेस किया जा सकता है। तो अपने आप में एक वन स्टॉप शॉप है ये मीडिया और एंटरटेनमेंट और न्यूज से रिलेटेड आस्पेक्ट्स की, और भारत का अपना ओटीटी है। तो हम सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वेव्स ओटीटी को अपने फोन पे, अपने टेलीविजन पे डाउनलोड करें, कम्प्लीटली फ्री है, एड सपोर्टेड, एंड इसका लाभ उठाए।
अपने दो दिवसीय बिहार दौरे के पहले दिन श्री जाजू ने आज पटना में दूरदर्शन केंद्र में मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्हें सभी इकाइयों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद श्री जाजू ने आकाशवाणी पटना और दूरदर्शन बिहार का निरीक्षण भी किया। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य के पटना, दरभंगा और तिरहुत के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा कोसी के स्नातक और सारण के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी। इन्हीं क्षेत्रों से वर्तमान में परिषद के सदस्य नीरज कुमार, सर्वेश कुमार, बंशीधर ब्रजवासी, डॉ एन के यादव, नवल किशोर यादव, डॉ मदन मोहन झा, संजय कुमार सिंह और आफाक अहमद का कार्यकाल अगले साल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। आज हिंदी दिवस है। आज हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि ये देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत है। श्री मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाएं और इन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लें। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिय को सूल। हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली यानी हिंदी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा साहित्य की इन कृतियों का स्मरण करके हम हिंदी के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। आज समय के साथ तकनीक से कदम ताल करती हिंदी मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी हिंदी को महत्व दे रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। महान कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना था, कहीं अकेला भी हूंगा मैं तो भी सोचने लाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा, मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जावेगी, मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जावेगी। हिंदी के महत्व को समझते हुए 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को और आसान बनाने तथा इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील की है। आज गुजरात के गांधीनगर में हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री शाह ने लोगों से मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का समर्थन करने का आह्वान किया।
मैं सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी मातृभाषा को बल दीजिए। मित्रों, यदि संस्कृत ने हमें ज्ञान की गंगा दी है तो हिंदी ने वो ज्ञान को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया है और हर व्यक्ति तक वो ज्ञान हमारी स्थानीय भाषाओं ने पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के तकनीक के माध्यम से हमारी स्थानीय भाषाओं को बल देने का काम किया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य खाद्य निगम के 6 सहायक प्रबंधकों और 6 गुणवत्ता नियंत्रकों को निलंबित कर दिया है। विभागीय मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विभाग पूरे राज्य में जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लाभुकों को सही समय पर सही वजन और गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ग्रुप ए का ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस वर्ष फरवरी के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। आकाशवाणी पटना से इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम आज एशिया कप में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जीत की प्रबल दावेदार है। दोनों टीम अपना पहला मैच जीत चुके हैं। पाकिस्तान अभी फॉर्म की तलाश में है, जबकि भारत विस्फोटक बल्लेबाजी और विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण में शीर्ष स्थान पर है। भारतीय टीम में शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज हैं। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर टीम में मौजूद हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिख रही है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अनुपस्थिति में पाकिस्तान की बल्लेबाजी में अनुभव की कमी नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज का मैच कौन टीम जीत पाती है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पटना सहित राज्य के विभिन्न भागों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, रोहतास, किशनगंज और सीतामढ़ी सहित प्रदेश के 33 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, एवं राज्य के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के अररिया एवं किशनगंज जिलों के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, कैमूर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, नवादा एवं जमुई जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
प्रदेश में आज जीतिया पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। कल नहाए खाए के बाद आज महिलाएं संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए निर्जला उपवास कर रही हैं। इस अवसर पर बाजारों में विशेष चहल पहल है। मिठाइयों, फल और पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभ अवसर पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा, विप्स ओटीटी को भविष्य में देश के एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, रोहतास, किशनगंज और सीतामढ़ी सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। और एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में अब से थोड़ी देर बाद भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से मैच का सजीव प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।